أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے, تم ہی میں سے ایک گروہ ہے, ایک جماعت ہے تمہارے اندر ہی سے, جن کے نام ملتے ہیں عبداللہ ابن عبی ہے, زید ابن رفاعہ ہے, مستح بن اساسہ ہے, حسان بن ثابت ہے جو مشہور شاعر تھے, حمنا بنت جاش ہے جو حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. اف عصبہ بولا جاتا ہے دس تک, ہو سکتا ہے اور لوگ بھی ہو, لیکن روایات میں حدیث میں ان لوگوں کے نام آتے ہیں. اور بھی کوئی مسلم اور منافق ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بات صحابہ کرام عبداللہ ابن عبی جو رئیس المنافقین تھا اس کی بات میں یہ پھنس گئے. لا تحسبوہ شرا لکم, اس بات کو یا اس طوفان کو اپنے حق میں برا مت سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یعنی گھبراؤ, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, اور ان گروہ میں سے ہر شخص جس نے جتنا گناہ کیا اتنی سزا ملے گی. جس نے جتنی تہمت لگائی حضرت عائشہ پر اتنی ہی سزا ملے گی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس نے ان میں سے اس طوفان کو شروع کیا یعنی بڑا حصہ لیا, یعنی عبداللہ ابن عبی, اس کو تو بڑی خطرناک عذاب عظیم ہوگا, خطرناک سزا ہوگی. یہ اللہ پاک نے صاف صاف بیان کر دیا. یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس صورت میں, میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 پڑھی, وہی سے 11 پڑھی. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی سزا اور اسی طرح قذف تہمت لگانے والے کی سزا اور لعان کا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے کسی اور کا ہے تو لعان کرنا ہے, اس کا پورا حکم میں نے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. آج کے سبق میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں واقعہ اسٹوری آف عفق. واقعہ عفق, عفق کا ذکر ہے یہاں, ان الذین جاؤوا بالعفق. عفق کا معنی ہے من گھڑت, جھوٹی کہانی, سفید جھوٹ, جس کے نہ کوئی سر ہے جس کو نہ کوئی دم ہے. ایسا جھوٹ لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ پاک نے اس لفظ کو استعمال کیا عفق, اس کو کہتے ہیں اسٹوری آف عفق. مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, دا پیپل زلیخا اکیوز یوسف علیہ السلام, تو کیا ہوا, ایک غیر کے بچے نے گواہی دی. ایسا بچہ جو نہ ان کا تھا, زلیخا کا تھا, نہ یوسف کا تھا, نہ کوئی رشتہ دار, بس ایک غیر بچہ تھا, اس نے گواہی دے دی کہ آگے سے فتح ہو کپڑا تو یوسف کا قصور ہے, اور اگر پیچھے سے فتح ہو تو زلیخا کا قصور ہے. سب سب بیان کر دیا. قربان جاؤں مریم علیہ السلام پر, جب ان پر تہمت لگی تو غیر کا بچہ نہیں, انہیں کے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں نبی ہوں, فنا فنا فنا, پورا ذکر قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی کہ ان کو ٹیسٹیکل پرابلمز ہے یا کوئی بیماری ہے پرائیویٹ جگہ میں, اس لیے وہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے, حدیث آف مسلم شریف. تو اللہ پاک نے ان کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے, جو عیب نہیں تھا, لوگ عیب سمجھتے تھے نبی کو عیب ہے, اس کو بتلانے کے لیے بچہ نہیں پتھر کو استعمال کیا, کہ پتھر آپ کے کپڑے کو لے کر بھاگا کہاں پر, قوم کے پاس, اور قوم نے دیکھ لیا ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ایسی چیز جو بولتی نہیں تھی اس سے بتلا دیا. لیکن قربان جاؤں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور بہت ہی محبوبہ آپ کی بیوی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی, تو نہ بچے کا استعمال کیا, نہ کسی جانور کا, نہ کسی پتھر کا, نہ پہاڑ کا, جبکہ میرے نبی پر تو ہزاروں معجزات ہے, کوئی بھی چیز گواہی دے سکتی تھی, لیکن اللہ نے کہا نہیں, میرا نبی سب سے بڑا ہے, تو اس کی گواہی, اس کی بیوی کی گواہی پاکی, نبی کی پاکیزگی ہے, میں آسمان سے ایک نہیں 10 آیت کو اتار دوں گا. اللہ پاک نے گواہی دی 10 آیت. ان الذین جاؤ سے آج کے سبق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتی تھی کہ شاید میں تو پاکیزہ ہوں, میں نے تو یہ کچھ کام کیا نہیں, شاید اللہ پاک میرے نبی کو خواب میں بتلا دے, یہ سوچتی تھی, یا کسی طرح کچھ کہہ دے. کبھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں ایک رکو اتار کر کے میری پاکیزگی ایسی بیان کرے گا کہ جگہ 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 قیامت تک حرم میں, مکہ میں, مدینہ منورہ میں, اقصی میں, دنیا میں, ہر جگہ انہی آیت کو قیامت تک پڑھا جائے گا. ایسی طہارت ظاہر کر دی قیامت تک کے لیے, ایسی پاکیزگی بیان کی اللہ پاک نے اپنے نبی کی محبوبہ کے لیے. میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کی, نبی لاد لے ان کی امت بھی لاد لے, اور یہاں تو ان کی بیوی ہے, اس لیے عبداللہ ابن عباس جب ان کا آخری وقت تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, تو دروازہ نوک کیا, عبداللہ ابن عباس تو بہت قریبی رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے, آخری وقت میں آئے حضرت عائشہ, فرمایا کون ہے, کہ عبداللہ, کہا نہیں نہیں آنے دو اس کو, اندر میں نہیں آنے دو, کیوں, کہا ابھی آ کر میری تعریف کرے گی, میں مر رہی ہوں میری تعریف کریں گے. حضرت عائشہ کو اپنی تعریف پسند نہیں تھی, she didn't like to somebody praise her, تو جا کر بتلایا بنا کہہ رہی, کہا نہیں میں تعریف نہیں کروں. جب اندر داخل ہوئے اجازت ملنے کے بعد, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات, کہا میں تو اللہ کی یہاں جا رہی ہوں, میں ڈرتی ہوں دوزخ سے, جہنم میں جانے سے اللہ میری حفاظت فرمائے. فرمائے تم پر کہاں جہنم, تم جہنم کی بات کر رہی ہے, تمہارا تو ذکر قرآن میں ہے, قیامت تک پڑھا جائے گا, قیامت تک تمہارا ذکر پڑھا جائے گا. ان الذین جاؤ والا رکو ہر سال ہر جگہ, بلکہ ہر وقت روز پڑھتے رہیں گے لوگ, اور تیری برات کا اظہار ہوتا رہے گا, تجھ پر کہاں جہنم ہوگی. ये बात अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब बयान की तो रोने लगी, बहुत रोई। तो ये वाकिया हजरत उरवा बयान कर, इमाम बुखारी इसको नकल करते किताब तफसीर, इस वाकिये को हजरत उरवा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफर में जाते थे तो कुरान अंदाजी करते थे। 9 बीवियां हैं, जिसका नाम निकलता उसको ले जाते थे, जिसका नाम निकलता उसको ले जाते थे। और ये सफर था जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बनुल मुस्तलक। ये बनु मुस्तलक एक कबीला और ट्राइब का नाम है। ये बड़े नाफरमान थे और बहुत ज्यादा सताते थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया इसकी तरफ गजवे के लिए जाओ, लड़ाई के लिए जाओ। अब उस वक्त किसको ले जाएं बीवियों में से, तो चिट्ठी डाल दी कुरानदाजी थ्रू अलॉट, किसका जिसका भी नाम निकले उठाया, हजरत आयशा का निकला। मैं चलो अच्छा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ले गया, ले गए। और उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया था कि नबी की बीवियां पर्दे में। अजीब वाकयात है। खैर, अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं पर्दे की आयत उतरी 3 हिजरी में, लेकिन अल्लामा दिमियाती रहिमहुल्लाह मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं 4 हिजरी में उतरी, 3 हो या 4 हो, 5 या 6 में, या 5 की एंड में 6 के शुरू में ये गजवा हुआ, गजवाए बनुल मुस्तलक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ चले। अब ये जो है पूरी के पूरी बात हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी में जिल्द नंबर 9 में सफा 398 पर नकल की है, बहुत तफसील के साथ। फिर क्या हुआ? बाज़े मुफस्सिरीन का कहना है इस सफर में 2 वाकी हुए। कितने हुए भाई? 2 वाकी। एक वाकिया तो तयम्मुम का आया, इसका आया तयम्मुम का, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से बोरो किया था सोने का हार नेकलेस, वो क्या हुआ, लॉस हो गया, गुम हो गया। तलाश करने में इतनी देर लगी कि वो हार मिला ही नहीं। अब जाहिर बात है नमाज का वक्त खत्म हो रहा था तो लोग कोसते थे, अबू बकर सिद्दीक से कहते आपकी बेटी की वजह से हमें बेर हो गई है, पानी नहीं, नमाज कैसे पढ़ेंगे। साहबा को नमाज की फिक्र लगी है, हम तो कहते हैं चलो यार बाद में पढ़ लेंगे। साहबा परेशान है, नमाज का वक्त जाएगा, पानी नहीं, नमाज पढ़नी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कहां पर है? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में है। आप सल्लम आराम फरमा रहे हैं और इधर ये लोग कह रहे हैं आपकी बेटी की वजह से हुआ देरी, डिले हो गया, और पानी नहीं, कैसे नमाज पढ़ेंगे, इसलिए और कोई रास्ता तो था नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आया गुस्सा और पीछे से कचूके लगाए हजरत आयशा को, बेटी को ऐसे पीछे से। लेकिन फरमाती खुद हजरत आयशा के मैं हिली तक नहीं, इसलिए कि हिलूंगी तो मेरे नबी की नींद में खलल होगा। मार भी खाती रही और क्या है, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी करती रही, शौहर का अदब करती रही। लेकिन क्या कुर्बान जाओ, खानदान है अबू बकर पर, पूरा खानदान सहाबा का खानदान है, और ऊपर से अहकाम भी अल्लाह पाक ने वो उतारे जो कयामत तक बाकी रहेंगे। अबू बकर रजी अल्लाह तआला के सहाबा ने कहा कुर्बान जाऊं आपकी बेटी हजरत आयशा पर जिसके सदके आयत तयम्मुम उतरी। आयत तयम्मुम उतरी ऐसी कि अब कोई परेशानी नहीं बीमारों के लिए,
या पानी न मिलने वालों के लिए कितना आसान कर दिया, पाक मिट्टी पर हाथ मारो फेर दो एक बार, पाक मिट्टी पर हाथ मारो हाथ पर फेर दो, हाथ पर फेर दो, न मसा है न पैर है लेकिन काम हो गया तुम्हारा, नमाज पढ़ लो, कितनी आसान। जो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बीमार लोग हो, सीरियस हो या कैसी जगह सफर में है, पानी नहीं, क्या करे, बात मेरी समझ में आ रही है ना। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनु के खानदान की बरकत है कि हमें आयत तैमूम मिली। एक वाकया तो ये हुआ, फिर साहबे किराम ने तैमूम करके नमाज पढ़ ली, सबका काम हो गया। और दूसरा वाकया हुआ, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती है, मैं तो छोटी उम्र की लड़की थी, हल्की फुल्की थी, और पर्दे की आयत नाजिल हो चुकी थी, तो हम उम्मुल मोमिनीन जिनकी बारी होती थी, हौडज में यानी कैरावेन जैसा होता है उस जमाने में, ऊंट पर छोटा सा रख देते थे, हम उसको कैरावेन कह दो इंग्लिश में, लेकिन हौडज होता है छोटा सा पर्दा, कैंट जैसा, टैंक इसी तरह, तो उसके अंदर में बैठ करके हम सफर करते थे। अब जहां ठहरना होता था तो हौडज को उतार दिया जाता, उसी में खाना पीना बैठना आराम करना होता था। अब सफर में एक जगह पर वापसी की बात है, ये लड़ाई होने के बाद वापसी में आ रहे थे, रात में पराव किया, क्याम किया, इशा के बाद देर हो गई, तो सबके सब सो गए, सबके सब सो गए। तो क्या हुआ, फिर मैं उठी, उठ करके दूर, बहुत दूर चली गई हाजत पूरी करने के लिए, कोई टॉयलेट तो थी नहीं वहां, दूर चली गई। जैसे आमतौर पर आपने मुज़दलिफा में देखा होगा, शुरू में लोग सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठ जाते हैं, फिर वो लाइन में लग जाते हैं, चलो वहां तो टॉयलेट है, तो दूर जाएंगी, तो इधर तो फजर होके लोग क्या है शुरू कर देंगे जाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, चलो आगे चलना है। तो वो सब समझे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना हौडज के अंदर में है, कैरावेन के अंदर में है, क्योंकि बहुत हल्की फुल्की थी, पता नहीं चलता। 3-4 साहबा मिलकर के उसको ऊंट पर रखते थे, सेट करते थे और चलते थे। नबी सासरम फिर तो सब चले गए, हौडज भी रख दिया, चले गए सब। ये आई वापस, वापस आई तो देखा कोई नहीं है, अंधेरा अंधेरा है, डार्कनेस है, कोई नहीं है। तो क्या करे, चलो यहीं बैठ जाती हूं जहां मैं थी, हो सकता है कोई मुझे तलाश करने के लिए वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दे, क्या आयशा नहीं है। सो आई सेट डाउन द सेम प्लेस वे आई वॉज, द प्लेस आई लेफ्ट। अब रात की अंधेरी थी, आई जरा ऐसे में लाई डाउन हो गई, आंख लगने लगी। इतने में एक सहाबी जो बड़े नेक सहाबी थे, जिनका नाम है सफवान इब्न मुअत्तल, बड़े नेक साहबी थे, गजवात में शहीद हुए। सफवान इब्न मुअत्तल फरमाते हैं कि मैंने देख, क्योंकि उनकी बारी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारी बारी है, तुम्हारा काम यह है कि सारे गजवा वाले निकल जाएं, सारे साहबा चले जाएं, यू हैव टू गो एंड फाइंड समबडी लेफ्ट एनीथिंग गेट इट, कुछ भूल गया हो कोई तो उसको लेकर आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई लोटा भूल जाए, कोई कुछ भूल जाए, कोई कुछ भूल जाए, तो वो ऐसे ऊंट पर बैठे बैठे निकलने लगे, तलाश करने लगे, देखा कोई सोया हुआ है, तो उन्होंने जोर से इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पढ़। तो हजरत आयशा नींद में उठ गई तो देखा ये तो उम्मुल मोमिनीन है, क्योंकि हजरत आयशा को आयते पर्दा से पहले देखा था तो समझ गए। जल्दी से आयशा ने अपने पर्दे कर लिया, यानी चादर और ली। तो सफवान बिन, यहां पर एक बात सुनाऊं, रिवायत तिर्मिजी शरीफ में है कि जब कभी ऐसी कोई परेशानी आए तो क्या पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाही। हम सिर्फ मैयत के वक्त पढ़ते हैं, हम सिर्फ मौत के वक्त पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बत्ती जलाई, अचानक हवा आई, बत्ती बुझ गई, तो आपने इन्ना लिल्लाही इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो हजरत आयशा फरमाती, वहां पर हजरत आयशा इतनी छोटी बात पर इन्ना लिल्लाह, वो समझती थी कि मस्जिद पर इन्ना लिल्लाह है, फरमाया कोई भी छोटी या बड़ी बात वाकियात आए परेशानी आए फौद इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पढ़ो। पढ़ा चादर और ली। हजरत सफवान बिन मुअत्तल ने काम क्या किया, ऊंटनी को बिठा दिया और दूर चले गए, ऊंटनी को बिठा दिया ताकि बैठ जाए। कहा इन्ना लिल्लाह के अलावा मैंने न सफवान से कोई बात की न सफवान मुझसे बात की, कोई लफ्ज नहीं, सॉरी मैं मुझे छोड़ के चले गए, फूला फूला कुछ भी नहीं, चुप। सफवान बिन मुअत्तल फरमाते हैं जमाने जाहिलियत में मैंने किसी गैर महरम से बात नहीं की, यहां तो मेरे नबी की प्यारी बीवी है उसके साथ मैं कैसे ऐसी बात कर सकता था। कौन कह रहे, सफवान कह रहे, बड़े नेक साहबी थे। बिठा दिया, बैठ गई, देख लिया के बैठ गई, कवर कर लिया। हजरत सफवान आए, ऊंटनी की लकीर नकील पकड़ी, ऊंटनी को उठाया और फिर चलना शुरू किया। आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। दोपहर के वक्त में सहाबा किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाले हुए थे, वहां पर पहुंच गए और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने उनको छोड़ दिया। बस ये वो स्टोरी है जिसको अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन ने उठाई और तोहमत डाल दी कि सफवान अंधेरी रात में, जाहिरी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हजरत आयशा के साथ। बस यही बात है, समझ बात आ रही है, यही बात। अब क्या कहूं, ये मुल्ला बाकिर जो है, मुल्ला बाकिर ये राबजियों का जो बड़ा है उसकी किताब है, अपनी किताब में लिखता है मजलिसी में कि हमारे इमाम महदी जाहिर होंगे। बात सुनना क्या कह रहे, हमारे इमाम महदी जाहिर होंगे और हमारा यकीन क्या, जाहिर नहीं होंगे पैदा होंगे। जाहिर किसको कहते हैं, कहीं छुप गए हो तो बाहर निकले उसको कहते हैं जाहिर, और जो पैदा ही नहीं हुई है मां की पेट से पैदा उसको कहते हैं पैदा होंगे। दोनों में फर्क है। उनका अकीदा यह है 355 हिजरी में वो गार में छुप गए, बगदाद से 60 माइल दूर जगह में गार है, केफ है, उसमें ये इमाम महदी छुप गए हैं, कुरान को लेकर गए हैं, जब आएंगे तो एक्स्ट्रा 10 पारे लेकर आएंगे, तो अभी 30 पारे कुरान कम है, 40 पारे हो जाएंगे। सब लिखा हुआ है किताब में, पढ़े फिर क्या करेंगे, जब जाहिर होंगे तो 4-5 काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि वो जाएंगे मदीना मुनव्वरा, यहां से बात लेता हूं और मैं आपके सामने बयान करता हूं, यहां से वो जाएंगे मदीना बगदाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर, और क्या लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ पर यानी इमाम महदी के हाथ पर बैठ करेंगे। सोचा कभी क्योंकि आखिरी इमाम है ना, उनका आखिरी इमाम है, अल्लाह के नबी बैत करेंगे इनके हाथ पर। फिर नंबर दो, उनके करीब में लिखा है 2 बुत है उसको निकालकर फेंक देंगे। किसको कह रहे हैं वो 2 बुत, 2 आइडल्स, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक। ये दूसरी बात, मैं उनकी बात को मैं कोट कर रहा हूं जो मेरे पास किताब में लिखा, बिल्कुल सही सत्य अरबी में लिखा। फिर तीसरी बात क्या करेंगे, फिर यहां से जाएंगे जन्नतुल बकी में, और जन्नतुल बकी में जाकर वहां पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की कब्र तो वहीं पर है, आपकी 8 बीवियों की कब्र एक साथ है, 8 बीवियों की कब्र उसमें हजरत आयशा लगा, हजरत खदीजा वहां पर, मक्का मुकर्रमा दूसरी बीवी वहां पर है मकाम जाना में, और ये 8 बीवी यहां है, अल्लाह 9 बीवी यहां है, तो 10 और 11 हुई, तो 9 बीवी यहां है। अभी जाएगी तो कब्र फटेगी, क्या कह रहा है, कब्र फटेगी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा निकलेंगे, हम इनको इसी जुर्म की सजा देंगे। समझ में बात आ रही है, इस जुर्म में
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہی حضرت عائشہ؟ اس کے بعد 5 سال. اس واقعے کے بعد 5 سال رہی. میرے نبی نے تو سزا نہیں, تو کون آ گیا؟ جبکہ اللہ نے ان کی برات کا اعلان آسمان سے کیا ہے, اور اس کو خالی اعلان ہی نہیں, قیامت تک کے لوگوں کی زبان پر حاوی, لوگوں کے سینوں میں داخل کر دیا کہ نبی کی بیوی پاک ہے, پاکیزہ ہے. امام نصفی کی کتاب پڑھ رہا تھا, علامہ ابو البرکات نام ہے ان کا, نصفی بڑے مصنف ہیں, بڑے محدث ہیں, بڑے محقق ہیں, تو تیسری سنچری. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے نا, 1 مہینے تک پریشان رہے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 1 مہینے تک. یہ واقعہ سناؤں گا. 1 مہینے تک پریشان رہے. وہ فرما رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے کہتا ہوں کہ منافقین لائز ہے, جھوٹ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکھی جو ہے, مکھی جو ناپاکی گندگی پر بیٹھتی ہے, انہوں نے لکھا اس بات کو, گندگی پر بیٹھتی ہے, وہ مکھی اللہ نے آپ کے کپڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس مکھی کو آپ کے کپڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں اللہ پاک, کیونکہ وہ ناپاک ہے, اور نبی کے بدن پر چاہے ذرا سی بھی ناپاک ہو لیکن بیٹھنے کی کبھی نہیں بیٹھی. یہ مکھی جو پاخانہ پر بیٹھتی ہے, اجازت نہیں ہے. تو اتنی بڑی عورت آپ کے بستر پر جو فاحشہ ہو کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ کے بعد انہوں نے نکل کیا. عثمان غنی رضی اللہ فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چلتے ہیں تو آپ کے بدن کا سایہ نہیں. کیا فرمایا؟ شیدوز نہیں. کیوں؟ آپ چلے ساتھ میں سب کے اور آپ کا شیدوز, آپ دیکھو ڈوکر میں چلتے آپ کا شیدو بھی, اور آپ کے ساتھ کوئی چلتا ہو تو آپ, تو آپ کے شیدو پر چلنا بھی آپ کے لیے بے ادبی تھی. تو اللہ کے نبی نے آپ کے شیدوز کو بھی ختم کر دیا تاکہ میرے نبی کے خلاف نہ ہو. تو کیسے ہوگا ایسی فاحشہ عورت تمہارے بستر پر سوئے؟ کون کہ عثمان غنی رضی اللہ زندہ رہے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تنگی نہیں ہے. عورتیں بہت ساری ہیں حضرت عائشہ کے علاوہ, حضرت عائشہ کے علاوہ عورتیں بہت ساری ہیں. تحقیق کر لیں بانڈی سے, بریرہ رضی اللہ تعالیٰ انا سے, وہ تو انہی کے گھر میں رہتی ہے, حضرت عائشہ کے گھر میں ہی تو رہتی ہے, 24 گھنٹہ کام تو وہی کرتی ہے, اور گھر والی کو پتا ہوتا ہے, کام والی کو, شاید ان کو پوچھ لو پتا چل جائے, اگر ایسا کچھ گڑبڑ ہے تو پھر بدل دے اور کوئی لے آئے. اس لیے حضرت عائشہ بہت ٹائم تک ناراض تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تم نے یہ مشورہ دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ فرمایا, بریرہ سے پوچھو, جو گھر میں کام والی نوکرانی باندھی ہے اس کو بلایا, فرمایا تم نے کبھی کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شک و شبہ والی, ڈاؤٹ والی بات دیکھی ہے؟ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے عورت کے اوپر کسی کو, تو کہہ رہی ہے میں تو حضرت عائشہ کے لیے خیر کے علاوہ کچھ جانتی ہی نہیں, چھوٹی عمر کی ہے, وہ آٹا گھونتی ہے, اتنی بات ہے کہ گھون کر کے پھر بچی ہے سو جاتی ہے, تو پھر بکری آتی آٹا کھا جاتی ہے, وہ اتنی بات ہے اور کچھ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ دو پارتی سوکنا میں تھی, اس پارٹی کے ہیڈ جو تھے وہ حضرت زینب تھی اور ادھر حضرت عائشہ تھی, تو حضرت زینب سے پوچھا, کیونکہ زینب تو ادھر پارٹی کی, تو ہو سکتا ہے کوئی گھر بھر سربت پتا ہو, چونکہ عام طور پر سکونوں میں سب بہت چلتا ہے, میں جانتی ہوں تو کیا کرتی ہے. زینب نے فرمایا میں تو حضرت عائشہ کو خیر کے علاوہ کچھ جانتی ہی نہیں. کما گئی تقویٰ والی عورت تھی وہ, سمجھنے بات آئی, دین کے معاملے میں برابر تھے, سمجھنے بات آئی. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی, اس بچی کو پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے,
घर पर आई, बीमार हो गई थी, सफर से आई तो बीमार हो गई, क्योंकि वो और भी मसले हो गए, एक तो हार का मसला हो गया और एक फिर वो क्या कहते हैं कि आप लॉस हो गई, घर पर आई बीमार हो गई, पता ही नहीं भाई मैं कमजोर हो गई, आहिस्ता आहिस्ता खाना कुछ कम कर दिया। तो एक रात में घर में टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, हम बाहर दूर जाते थे एक जगह में, वहां पर हाजत को पूरी करके वापस आ जाते थे। तो मेरे साथ हजरत उम्मे मिस्ता यानी हजरत मिस्ता की माँ थी, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनु की खाला होती है, खाला बताए माँ की बहन, हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ की बहन थी, उनका बेटा मिस्ता बद्री साहब। तो उम्मे मिस्ता उनकी मां जो है वो मेरे साथ चली, हम गए दूर दूर, वापसी में चादर में पैर फंस गया, तो हजरत उम्मे मिस्ता गिरने के करीब हो गई, तो उन्हें गिरने से पहले क्या कहा, गिरने के बाद क्या कहा, मिस्ता तेरा नासु तो हलाक हो। इसके बारे में कह रही अपने बेटे के बारे में, आयशा फरमा रही है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा बेटा मिस्ता के बारे में तुम ऐसा बोल रही हो, कहा वो तो बद्री साहबी है, आयशा क्या फरमाती है, वो तो बद्री साहबी है, उनके बारे में तुम ऐसा बोल रही हो। तो उम्मे मिस्ता मां ने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ, कब क्या हुआ, कहा अब्दुल्ला इब्ने उबै ने तुम पर तोहमत लगाई, तुम पर इल्जाम लगाया और मेरा बेटा भी उसमें शामिल हो गया थोड़ा, वो मानने लगा, इसलिए मैं उस पर लानत कर रही हूं। समझा रही है, अरे तो आयशा तो परेशान हो गई, उन बिचारी को कुछ पता ही नहीं था, घर पर आई बीमार और ज्यादा हो गई, बीमार थी और बीमार हो गई। अब एक महीना ऐसा रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, सलाम करते थे, लेकिन पास में बैठना वगैरह थोड़ा कम कर दिया था, कैसे हो तबीयत ठीक है पूछते थे, सलाम करते थे चले जाते थे, तो और परेशान थी। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो मैं अपने अब्बू के यहां जाऊं, फरमाया ठीक जाओ, मां बाप के यहां जाओ, भेज दे। यहां दो बात मुझे समझानी है, वो हार मिला, वो नेकलेस मिला ऊंटनी के नीचे से, कहां से मिला था, ऊंटनी के नीचे से, जो ऊंटनी बैठी हुई थी वहीं गिर गया था, जब ये उठाया सवार के लिए तो वहीं से मिला, वो नबी पास में बैठा है उसको गैब का इलम नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, नबी पास में है उनको गैब का इलम नहीं, तो फिर नबी आलिमुल गैब नहीं हुए, आलिमुल गैब कौन है ना, बता देते, परेशान ना हो, हार यहीं पर है उठाओ उसको ले लो, समझ में बात आ रही है ना, यहां पर भी पता नहीं है कि बात सच है या झूठ है, मेरी बीवी की पता ही नहीं है, वो तो इंतजार में है कि कोई सहाबी मुझे बतलाए, कोई सहाबिया मुझे बतलाए। अब वो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी से पूछ रहे तेरा क्या ख्याल है, बीवी भी बीवी थी अय्यूब अंसारी की, खिदमत करने वाली थी सबसे पहले हिजरत में, वो कहने लगी अबू अय्यूब अगर तुम सफवान की जगह होते तुम क्या कहते, कहा नबी की बीवी हरमे मोहतरम मैं ऐसा, फरमाया अगर मैं होती आयशा की जगह तुम क्या कहते, और मैं कैसे हो सकता है ऐसा, तुम तो बहुत दूर हो मैं बहुत दूर हूं, वो तो नबी की लाडली बीवी है, वो हमारी मां है, उसके बारे में कैसे ऐसे सोच सकते हैं आदमी। ये सहाबा का यकीन था उम्मुल मोमिनीन के बारे में, ये बदमाश लोग अल्लाह के नबी की बीवियों पर इल्जाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं। इसीलिए हदीस में आता है जब तुम सुनो कि कोई सहाबा पर तोहमत लगाए, नबी की बीवियों पर तोहमत लगाए, हदीस सुना रहा हूं याद रखो इस हवाले से, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर कोई अगर तोहमत लगाए तो तुम कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, ये बद्दुआ न किसी वली ने दी है, न किसी साहबी ने दी है, न किसी इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी किसी ने नहीं, दुनिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है, जो तोहमत लगाए, जो बुरा भला बोले, जो बकवास करे, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। और जो लोग सुनते हैं सहाबा के बारे में ये बकवास कर रहे हैं, या सहाबियात के बारे में, उम्मुल मोमिनीन के बारे में और चुप रहे, तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अलैक वल मलाइकति वन नास अजमईन, अल्लाह की तुझ पर लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, सारी दुनिया की तुझ पर लानत हो कि मेरे नबी के सहाबा को बुरा भला कह रहे तुम खामोश बैठे। हाँ
बात सुनो,
हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चली गई, दिन गुजर गए एक महीना, अल्लाह के नबी परेशान, सहाबा परेशान,
जाहिर ही बात है ना, अल्लाह के नबी है
और वो तो चाहते ही थे किसी तरह बदनाम करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी के जरिए, फुला के जरिए, फुला के जरिए। अल्लाह के नबी खड़े हो गए मिंबर पर, कहा इसने मुझ पर ऐसी तोहमत लगाई है कि वो आग मेरे घर में लग चुकी है, मेरे सहाबाओ तुम मेरी कितनी मदद कर सकते हो।
बुखारी के लिए सुना रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं, बुखारी पढ़ाते पढ़ाते 15 साल हो गए, नई बात बुखारी के हदीस है, सही हदीस है। हाँ, जिस आयशा के साथ इतनी मोहब्बत है, बुखारी शरीफ में है कि हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वर आ गए और फुतुहात होने लगे तो सहाबा किराम इंतजार करते थे कि कब मेरे नबी की बारी हजरत आयशा के मकान में आए तो हम हदिया भेजे।
बात समझ में आ रही है, कब यहां पर बारी आए तो हम यहां आ गया, क्यों? अल्लाह के नबी को बहुत मोहब्बत है। अब दूसरी बीवियों ने कहा या अब हमारे घर आते हैं तो हदिया नहीं आते, वहां आते हैं। ये बुखारी की हदीस सुना रहा हूं मैं। तो सारी बीवियां जमा हो गई और आई हजरत उम्मे सलमा के पास, वो भी बीवी थी, तो उम्मे सलमा तुम आगे बढ़ो और अल्लाह के नबी को कहो कि आपकी बारी जिस बीवी के घर पर हो हर जगह हदिया आने चाहिए ताकि सबकी खुशियां हो। हमारे लेस्टर का एक आदमी शेख, हमारे शेख यूनुस साहब के पास गया था, उसने कहा हजरत मैं कुर्बानी फुला के लिए, फुला के लिए, फुला साहब, फुला के लिए करता हूँ। तो हजरत शेख ने कहा हजरत आयशा के लिए भी किया करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी को बहुत मोहब्बत थी। कहा यूं, कहा उसने आकर कुर्बानी की, कुर्बानी के तीसरे दिन में बकरीद के बाद उसने उम्मुल मोमिनीन को ख्वाब में देखा और उम्मुल मोमिनीन उसका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के नबी की महबूबा है, बहुत फजाइल तो बहुत है उनके। तो उम्मे सलमा आगे बढ़ी, बुखारी की हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीये में सिर्फ हजरत आयशा ही, आप वहां जाए तो बड़े हदीये उनके यहाँ आते, हमारे यहाँ तो कुछ आता ही नहीं है। तो अल्लाह के मैंने चेहरा फेर लिया, फिर आई इधर, फिर चेहरा फेर लिया, फिर तीसरी बार कहा, फरमाया उम्मे सलमा आयशा के बारे में मुझे तकलीफ ना पहुंचा हो। क्या कह रहे वो, कह सकते थे सबको तो हदिया, मेरा हाथ में थोड़ा है हदिया देना, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ ना पहुंचा क्यों? फरमाया आयशा जब शादी हो गई 3 दिन मुसलसल जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिल्क कपड़े में तेरा फोटो लेकर मेरे पास आए और फरमाया अल्लाह ने, जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने कहा तुम्हारी शादी इससे होनी है, लेकिन मैं तुझे पहचानता नहीं था, सिर्फ फोटो देखा था, अब तो शादी हो गई मैं तुझे देख रहा हूं। उस वक्त मैं कहता था अल्लाह अगर मुकद्दर में है तो ये लड़की मुझे अता फरमा, अल्लाह की तरफ से था। एक मरतबा फरमाया आयशा अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपको सलाम अर्ज किया, फरमा उनको मेरा सलाम आप दे दो, इसलिए कि आप देख सकते हैं मैं नहीं देख सकती हूं। अरे बात समझ में आ रही है ना, ये एक अल्लाह के नबी सासम का ठीक है जाओ, फिर आते थे खबर लेते थे। एक दिन आए बिस्तर पर साथ में बैठे, अरे आयशा तो कमजोर हो रहे, फरमा 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, जब अल्लाह के नबी मेरे बिस्तर पर आए पहले कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन, हदीस बुखारी है, उसके बाद हम लोग सलात के बाद कहा आयशा अगर तू बड़ी है पाक है घबरा नहीं, अल्लाह तेरी पाकिजगी बयान करेंगे, लेकिन अगर तुझसे गुनाह हो गया है इंसानी एतबार से हो सकता है, इस्तिगफार कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। तो कहा अब तो मेरी आंखों में एक कतरा तक नहीं, रोना भी सूख गया था सारा पानी। मैं उठी और एक बिस्तर पर जाके फिर लेट गई। मैंने अम्मी से कहा अम्मी जवाब दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमाया मैं क्या जवाब दूं, फरमा अबू तुम जवाब दो अबू बकर इनको, फरमा हम क्या जवाब दें इनको, इतने में आप पर बस इतनी ठंडी थी, ठंडी यानी विंटर का जमाना था, फौरन वही उतरना शुरू हो गई। इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आयशा के बेड पर वही लेकर आए, और हजरत आयशा कहा करती थी मैं वो बीवी हूं कि जिसके बिस्तर पर वही उतरी है, ये 10 आयत है, मेरे बिस्तर पर उतरी है, मेरे अबू के घर में उतरी है, आपकी जिंदगी मेरे साथ ऐसी रही कि वफा भी मेरे घर में हुई है, आखिरी वक्त में मिसवाक मैंने चबाया, मेरा लुआब नबी के मुंह में गया है, यूं कहा था साहब जलालुद्दीन ने, सब बातें लिखी है। उतरी आयत और फिर जब, और इतने पसीना हो रहा था इतनी विंटर में जैसे मोटी टपक रहा है, और वही खत्म हुई, जिब्रील सलाम चले गए तो खुश हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक महीने के बाद हंसी, एक महीने के बाद आपकी मुस्कुराहट, फरमाया आयशा तेरे लिए बरायत उतर गई, मां ने कहा आयशा खड़ी हो और अपने शोहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा कर, फरमाया नहीं नहीं मैं इनका शुक्र अदा नहीं करूंगी, मैं तो अल्लाह का करूंगी जिसने मेरी बरात जाहिर की है। बीवी की नाज होती है ना इनकी, अल्लाह की करूंगी। इसलिए अल्लाह के नबी साहब फरमाते आयशा तो जो मुझसे राजी होती है मैं जानता हूं, नाराज हो तो भी जानता हूं, फरमाया कैसे, फरमाया तू राजी होती है तो कहती रब्बे मोहम्मद की, मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज होती है कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। खैर उतरी वही, और फिर सारे मसले जाहिर हुए, लेकिन उससे पहले यूं कहा कि तुमने अगर गुनाह किया है तो तौबा कर ले। तो क्या जवाब था उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का, फरमाया जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने पर फसबरुन जमील कहा था, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह मदद करेगा मैं सबर कर रही हूं, इसी तरह मैं भी सबर कर रही हूं जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने सबर किया, बस ये जुमला पढ़ना था कि अल्लाह की तरफ से वही उतरना शुरू हो गई। ये पूरी हदीस बुखारी में है, अब वक्त नहीं है मैं इसका तर्जुमा, इन्नल लदीन जाऊ बिल इफ्क उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुवा खैर, इंशाल्लाह फिर एक एक आयत का हम तफसीर से तर्जुमा करते जाएंगे, समझाते जाएंगे कि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह ताला इस आयत में क्या कह रहा है। इन आयतों में उन सहाबाए किराम को जो मुलव्वस हो गए थे उनको अल्लाह क्या कह रहा है, इसीलिए पहला हुक्म जीना का नाजिल किया यानी जीना की क्या सजा है, दूसरा हुक्म हद कजफ तोहमत लगाने को, और तीसरा हुक्म जो था वो लियान का, चौथा हुक्म यहां हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बुजुर्गी बयान की कि ऐसी सख्त वईद बयान की उन लोगों के लिए कि किसी गुनाह पर ऐसी सख्त वईद बयान नहीं की अल्लाह पाक रहे उम्मुल मोमिनीन के लिए। आई बात समझ में, इंशाल्लाह फिर हम इसको तफसील से बयान करेंगे, अल्लाह पाक हमें जरा समझने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, आप तो नहीं होंगे इंशाल्लाह, फिर हम थोड़ा तर्जुमा के साथ समझाएंगे इसको, इसी आयत को समझाएंगे यानी 11 से इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब या रहमान रहीम या जल जलाल या हन्नान या मन्नान या बदी अस्समावात बिना يا أكرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، بولنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد، اللہ تعالیٰ ان کے صحابہ اور ازواج مطہرات سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی باتوں پر چلنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے، یا اکرم الاکرمین، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے سمجھانے والوں میں سے بنا دے، قرآن کو سمجھنے سمجھانے والوں میں سے بنا دے،
اے اللہ قرآن سے سچی لگن محبت نصیب فرما, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی لگن نصیب فرما, سچی محبت نصیب فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو دور فرما, بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بیمار شفا عطا فرما, بیمار کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں میں, دلوں میں, کان میں, دماغ میں, بدن میں نور پیدا فرما, نور پیدا فرما, نور پیدا فرما, تاکہ ہم کہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اکرم الاکرمین ہماری اولاد کو نیک بنا, اے اللہ ہماری اولادوں کے سینے دین کے لیے کھول دے, ہمارے اور ہماری اولادوں کے سینے اور دماغ تیرے دین کے لیے کھول دے, تیرے دین کی دعوت کے لیے کھول دے, دین کو حاصل کرنے کے لیے کھول دے, اے اللہ علوم نافیہ حاصل کرنے کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے. اے اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما, اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما, جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کو قبول فرما. اللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے, اے اللہ ان آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ.